खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सब की सलामती हो। सोए हम सब खुदावंद के हुजूर झुकें और अपने आप को खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए तैयार करें। दिल दिमाग सोच ख्याल और अपनी पूरी तवज्जो को उसकी तरफ लगाएंगे। और अगर किसी किस्म की बेचैनी, फिक्र, गुनाह, गलती, खता है तो उसे खुदावंद के हुजूर अपनी शख्सी बातचीत में खुदावंद के सुपुर्द करेंगे, ताकि वो जो हमारे बोझों को, हमारी फिक्रों को, हमारी खताओं को दूर करने में कादर है, वो हमें धोकर पाक और साफ़ करे, ताकि उसके मियार के मुताबिक जैसे वो चाहता है कि रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश और इबादत की जाए। सो चंद लम्हों की खामोशी में अपनी अपनी दिल की हालत का जायज़ा लेंगे। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, दी गई तमाम नेमतों बरकतों के लिए। खुदा बाप, आज हम जो कुछ भी तेरे कलाम में से अपनी मजबूती के लिए, तुझ में ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद नज़दीकी हासिल करने के लिए सीखें, हम सब की रहनुमाई करना, ना कि महज सुनने वाले बल्कि अमल करके 100 गुना फल लाएँ और तेरा बेटा यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। उसी के मुकद्दस और जलाली नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकाले ने अहदनामा में से क्रंथियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, पहला क्रंथियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका 16वां बाब। और वहाँ पर खुदावंद का बंदा पालूस रसूल ईमानदारों को लिखते हुए उनको कहता है कि अपने आप को जांचो, अपने आप को पहचानो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को कुछ समझो और कुछ भी ना हो। इसलिए वो ईमानदारों को लिखते हुए 13वीं आयत में इस बात को बयान करता है कि वो चीज़ें हैं जो तुम में ज़रूर है कि पाई जाएं। और 13वीं आयत में कहता है, क्रंथियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका 16वां बाब, उसकी 13वीं आयत। जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इसका तल्लक खुदावन खुदा का बंदा पालूस रसूल जब बयान करता है तो बहुत गहरा है, इफ़सियों 3 बाप, उसकी 14, 15, 16 आयत के साथ। और ये वो हुक्म है जो ईमानदारों को वो देता है कि जागते रहो। यहाँ पर वो हरगिज़ जिस्मानी जागने के बारे में बात नहीं करता, वो कहता है कि रूहानी तौर पर तुम्हें ये पता हो, रूहानी तौर पर तुम्हें इसके बारे में इलम हो। और वो इलम क्या है कि खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद की साथ चलने की तुम्हारी चाहत, उसके साथ तरतीबवार तुम्हारा तवाज़न। जैसे तोलने वाले को पता है कि अगर वो कम तोलेगा तो उसका जो कंडा है वो एक तरफ झुक जाएगा, अगर वो बराबर तोलेगा तो वो दरमियान में रहेगा और उसको बताएगा कि ये दुरुस्त है। पालूस रसूल भी कहता है जागते रहो, रूहानी एतबार से जागते रहो, और फिर कहता है ईमान में कायम रहो। ईमान में कायम रहने से मुराद वो कहता है कि उसमें गुंदे रहो, उसमें बंधे रहो, उसमें पावेस्त रहो, उसमें क्या रहो, मसरूर रहो। और इसके बारे में खुदावन खुदा का बंदा दाऊद भी जबूर 37 उसकी 4 आयत में कहता है, खुदावन में मसरूर रह। मसरूर रहने से मुराद यानी कि खुदावन में जुड़ा रह, उसमें सकूनत कर। और हमारी सकूनत तब ही होती है जब हम पहल करते हैं। यहाँ पर वो कायम रहने से मुराद हरगिज़ नहीं कहता कि तुम्हें ईमान लाने की ज़रूरत है, वो कहता है जो ईमान तुम ला चुके हो उसमें कायम रहो। उसमें पावेस्त रहो, उसमें गुंदे रहो, उसमें जुड़े रहो। और जिसके लिए लफ्ज़ पुराना अहदनामा इस्तेमाल करता है, मसरूर होना। ज़बूर 37 उसकी 4 आयत में मसरूर होना से मुराद यानी कि सुकूनत करना, गठे रहना। और नया अहदनामा उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जब हम यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब में देखते हैं। मेरे साथ निकालें इस लफ्ज़ को, देखें जो यीशु मसीह ने आखिरी रात जो पैगाम अपने शागिर्दों को दिया, जो भेद की बातें सिखाई कि अगर तुम कायम रहना चाहते हो, अगर तुम पवस्त होना चाहते हो। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाप उसकी 1 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों को ये कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। सादा लफ्ज़ों में, मैं अंगूर का वो दरख्त हूँ, मेरा बाप वो है जो बागबान है जिसने लगाया है, और तुम सब जो मुझ में कायम हो, डालियाँ हो, अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो, तुम मुझ में कायम रहो। ये वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है नए अहदनामा में, कायम रहो, पवस्त रहो, जुड़े रहो, रफाकत रखो, कायम रहो। और मैं तुम में, जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। अंगूर का यीशु मसीह ने कहा कि दरख्त मैं हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें वही फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। सो पुराने अहदनामे का लफ्ज़ पवस्त होना, गुंद जाना, मसरूर होना, सकूनत करना, रफाकत रखना, जुड़े रहना लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। और नए अहदनामा में कायम होना, जुड़े रहना, मजबूत होना, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं नए अहदनामा में। इसीलिए खुदा का बंदा पालूस रसूल हुक्म देते हुए कहता है, जागते रहो, ईमान में कायम रहो। ईमान में कायम हम तब ही रह सकते हैं। यहाँ पर हरगिज़ वो नहीं कहता कि तुम ईमान लाओ, वो कहता है तुम एक दफ़ा ईमान ला चुके हो कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और दुनिया का शहंशाह। और किसी लीडर ने ये बात कही है कि सच सच है, खा कोई यकीन करे या ना करे, झूठ झूठ है पर हाँ भले सारी दुनिया उसका यकीन कर ले। सो यही वो सच है जो खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है। और पहला करंथियों उसके 16वें बाब में उसकी 13वीं आयत में वो 5 हुक्म देता है, जागते रहो, रूहानी इतबार से बेदार रहो, ईमान में कायम रहो, तुम्हारी रफाकत बनी रहे, कोई गुनाह, कोई गलती, कोई ख़ता तुम्हारे और खुदा के दरमियान हायल होती है तो उसे अपने और खुदा के दरमियान दीवार ना बनने दो। इसलिए ईमान में कायम रहो यानी कि रफाकत में बहाल रहो, क्योंकि जब हम गुनाह करते हैं हमारी बहाली जो वो है रुक जाती है। मर्दानगी करो, फिर कहता है मजबूत हो। ये वो 4 हुक्म है। और 5वां हुक्म है, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। मेरे साथ निकालें इफ़सियों 3 बाप उसकी 16वीं आयत से, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो, क्योंकि मोहब्बत ऐसा जुज़ है जो मसीही ज़िंदगी की क्या है, कड़ी है, जिसे कुंजी कहा गया है। इसलिए 16वीं आयत में कहता है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर होते जाओ। مضبوط ہوتے جاؤ، زوراور ہوتے جاؤ، مردانگی کرو یعنی کہ دلیری کرو، مضبوط رہو اور جاگتے رہو، اور جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو. اور کہتا ہے اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے. یہ دوسرا ایک اور لفظ ہے جو نئے عہد نامہ میں استعمال کیا گیا ہے، قائم رہنے کے لیے، جڑے رہنے کے لیے، رشتے کے لیے، رفاقت کے لیے، سکونت کا، کہ مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے. اور اس نے کرنتھس کی کلیسیا میں پالوس نے کیا کہا بار بار، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کو بتوں سے کیا مناسبت؟ کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں اپنے لوگوں میں رہوں گا اور سکونت کروں گا. خدا کے رہنے کی جگہ، خدا کی سکونت گاہ. سو پالوس کی یہ دعا ہے کہ ایمان کے وسیلہ سے، جو ایمان تم خداوند یسوع مسیح پہ رکھتے ہو، مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے. مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے. یہ پالوس رسول کی دعا ہے کلیسیا کے لیے، ایمانداروں کے لیے، کہ سکونت کرے. کیونکہ بہت دفعہ ایماندار ایمان تو رکھتے ہیں لیکن مسیح ان کے دلوں میں سکونت نہیں کرتا، ان کے دلوں میں قائم نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی رفاقت اور شراکت نہیں ہوتی. اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ یہ سچ ہے، کیونکہ بائبل مقدس بتاتی ہے، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہاں پر خدا کسی غیر قوم کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہا، کسی اس شخص کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہا جس نے ابھی تک اسے قبول نہیں کیا، یا اس کے لیے اس سے بات نہیں کر رہا کہ جس نے ابھی تک اسے نہیں پہچانا. مکاشفہ 3 باب میں خداوند یسوع مسیح یوحنا کو لکھتے ہوئے، اس سے بتاتے ہوئے، 7 کلیسیاؤں کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں. کلیسیا اسے ہی بائبل مقدس میں کہا گیا ہے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے. اور یسوع مسیح سردیس کی کلیسیا کو، لودیکیا کی کلیسیا کو، فلادیفیا کی کلیسیا کو، سپرنا کی کلیسیا کو، دوسری تمام کلیسیاں کو کوئی نہ کوئی پیغام دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری یہ حالت ہے. سو پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو کہتا ہے قائم رہو، جاگو، مضبوط بنو، مردانگی کرو، اور جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو. اور افسس میں ان کو کہتا ہے کہ میری یہ دعا ہے کہ مسیح ایمان کے وسیلہ سے، جو ایمان تم اس پر رکھتے ہو، تمہارے دلوں میں سکونت کرے. سو اس کلیسیا کو جو لودیکیا کی کلیسیا ہے، اسے خداوند یسوع مسیح نے لکھتے ہوئے کہا، دیکھ میں دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں. کلیسیا سے بات کی جا رہی ہے. کلیسیا ایمانداروں کی یہ حالت ہو سکتی ہے کہ وہ مسیح پر ایمان تو رکھیں لیکن مسیح ان کے اندر سکونت نہ کرے، ان میں قائم نہ ہو، ان سے رفاقت نہ ہو. کیونکہ مسیح ہمارے اندر تو رہتا ہے جب ہم اسے یسوع مسیح قبول کر لیتے ہیں، لیکن کیا وہ ہمارا بادشاہ ہے؟ کیا وہ ہمارا شہنشاہ ہے؟ سو لودیکیا کی کلیسیا کا یہی حال تھا. اور ان میں کیا تھا؟ ان میں گناہ پایا جاتا تھا، تکبر کا، دولت کا، اپنے آپ میں بڑا گھمنڈ، اپنی راست بازی کی باتوں کا، کہ میں یہ کرتا ہوں. خداوند خدا نے ان کو کہا کہ تو ننگا، محتاج اور اندھا ہے، اس لیے مجھ سے صلاح لے، مجھ سے تو پایا ہوا سونا لے لے، مجھ سے سیکھ تو میں تجھے سکھاؤں گا، مجھ سے بات کر، مجھ سے رفاقت رکھ. اور یہاں پر جو طریقہ کار خداوند یسوع مسیح نے اس دور کے مطابق استعمال کیا وہ کیا ہے؟ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. اور پچھلے دنوں میں چاچا جی سے میں بات کر رہا تھا کہ ایک مصرف نے، ایک آرٹ بنانے والے نے، ایک پینٹر نے ایک تصویر بنائی. اس نے تصویر کیا تھی؟ وہ دروازہ تھا، اور وہ دروازہ اس طرح تھا कि जैसे इंसान का दिल हो। सब ने देखने के लिए आए उसकी नमाइश की, सब ने कहा कि इसमें ये गलती है, और वो गलती क्या थी, उसने कुंडी नहीं बनाई, उसने कुंडी नहीं बनाई। सब ने कहा ओ आप बहुत कारीगर हैं लेकिन ये गलती है। उसने कहा कि ये इंसानी दिल है, इसकी कुंडी बाहर नहीं अंदर है। और क्यों उसने ये कहा, क्योंकि मकाशवा की किताब में यीशु मसीह ने कहा कि दरवाज़ा मैं खटखटाता हूँ बाहर से, अंदर से खोलने का फैसला तुम्हारा है। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर खाना खाऊंगा। खाना खाने का जो तरीका कार है वो क्या है, रफाकती है। रफाकत करना, किसी के साथ बैठकर सुकूनत करना, किसी के साथ बातचीत करना, किसी के साथ क्या होना, एक होना। खाने के लिहाज से, कलाम के लिहाज से, और यीशु मसीह यही उस कलीसिया को कहता है कि तू अपने आप को महालदार, तू अपने आप को सब तरह की बातों में कहता है कि बहुत कुछ है, लेकिन तू मेरी आवाज़ को सुनता है लेकिन तेरी मेरे साथ रफाकत नहीं है, तेरी मेरे साथ कोई भी सुकूनत नहीं है, तू मुझे अपनी सुकूनत की जगह नहीं बनाता, रहने की जगह, रहने की जगह, सुकूनत करने की जगह और खाने की जगह। ये वो अल्फाज हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं दौर के लिहाज से, जो आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत दफ़ा हम कहते हैं कि भाई जी बहन जी आएँ हमारे साथ एक वक्त का खाना खाएं, और ये क्या है, रफाकत है, गुफ्तगू है। मेरे साथ तुम्हारे साथ बैठने की रफाकत होगी तो एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, और यही बात खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तुम जानते तो हो, पहचानते तो हो, लेकिन अगर मेरी आवाज़ सुनो तो मेरे साथ रफाकत रखो। सो आज हम सबको अपने आप से ये सवाल करने की ज़रूरत है कि जो दुआ पालूस रसूल ने की है कि ईमान के वसीला से, यानी कि जो ईमान तुम्हारा यीशु मसीह पर है, 17वीं आयत में कहता है मसीह यीशु तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। ये नहीं कहता कि वो कर रहा है, वो कहता है कि मेरी ये दुआ है कि वो करे, कि ये हो जाए, ये उसकी दुआ है, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके, यानी कि उसमें कायम रहकर बहुत सा फल लाओ। सो सवाल आज हम अपनी ज़ात से करने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा तो है, लेकिन क्या हर रोज़ मेरी उसके साथ रफाकत है, क्या हर रोज़ वो मेरी बातों, मेरे ख्यालों और मेरी ज़िंदगी के हर लम्हों में मेरा ऐसा कायद है जो मुझे सीधा रास्ता दिखाता है, क्या मेरी शख्सी उसके साथ रफाकत है। इन सवालों पर हम सबको गौर करने की ज़रूरत है, और आज के दिन में